Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandiji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
यह भी संसार के अंतर्गत है, इसीलिए कहे न कर्मणा। ये जो तीन ऐसणा है ना, लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, तो कर्म से लोकेशणा की पूर्ति होती है। आप कर्म किए जाते हैं, लोग मना करते, फिर भी एक यश की भावना, प्रतिष्ठा की कामना, कैसा करूंगा तो लोग यशगान करेंगे। मतलब कि सभी लोग आपकी वाहवाही करें, यहां पर भी और मरने के बाद भी। इसी का नाम लोकेशणा है। आदमी सबसे अधिक परेशान लोकेशणा से रहता है, उसको पता नहीं मरने के बाद कोई भी याद नहीं करना, इसलिए जीते जी अपनी तस्वीर बनवा लेता है, होता है कि नहीं, मूर्ति, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद कोई ना बनाए, भरोसा नहीं। इसलिए तो कर्म मतलब कि यहां जो कर्म का निषेध किया उसका तात्पर्य है लोकेशणा के निषेध में, कि जीवन में लोकेशणा बनी रहेगी कि सारे लोग हमारी प्रशंसा ही करें, तारीफ ही करें, गुणगान ही करें। इस यदि आप वासना में पड़े रहेंगे तो भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कई बार ऐसा जीवन में घटना घटती है कि आप चाहते हैं कि मैं समय से सत्संग श्रवण करूं, भजन करूं, ध्यान करूं, उपासना करूं, परंतु ऐसे व्यवहारिक कृत्य आ जाते हैं कि आप कर नहीं पाते। अब व्यवहारिक कृत्य क्यों आते, तो आप कहते हैं नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, इसको कुछ पता ही नहीं व्यवहार का, लोग हमारी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, ना खुश होंगे। इतने के लिए आप अपने प्राण प्यारे भगवान को भी किनारे रख देते, चलो भगवान की पूजा उजा बाद में हो जाएगी, भले ये काम कर ले। इसी को बोलते हैं लोकेशणा। और ये पक्की बात है, आज निकल यही लोक संसार आपको धोखा देना ही देना। जब आप परमात्मा से बहुत दूरी बना लेते हैं तो दुनिया कहता अब तो अच्छा मौका है, भगवान दूर हो गए, अब इसको छोड़ो। अक्सर ऐसा ही होता है। यदि आप संसार की उपेक्षा करो, तिरस्कार करो, दूरी बनाओ, तो संसार जबरन आपके नजदीक आएगा और संसार को इतने गले लगा उतना दूर भागेगा। इस संसार की प्रतिज्ञा है कि जितना कोई हमें चाहेगा, गले लगाएगा, उतना मैं इसको दूर फेंकूंगा, और जितना कोई अपेक्षा करेगा उतना उसके पीछे भागता। देखो महात्मा लोग है ना, सब छोड़ छाड़ करके आते, फिर भी दुनिया उनके पीछे, उसको छोड़कर कहीं और जाते, वहां पीछे। क्योंकि सृष्टि का विधान है, जो आप चाहेंगे ना, जो पकड़ेंगे वो आपसे दूर भागेगा, और जो दूर भागेगा उसके पीछे पीछे जाएगा। तो आपकी होशियारी इसी में है कि संसार को ज्यादा मन से नहीं पकड़ना, न इंद्रियों से पकड़ना, न चाहना। जब नहीं चाहेंगे तो आपके पीछे पीछे चलेगा, और हम जितना चाहेंगे उतना वह दूरी बनाएगा। इसलिए सावधान कर दिया, न कर्मणा, कर्मों से उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आप सोचे, फिर तो आराम से अकर्मण्य, कुछ भी नहीं करना। ये मध्य युग में ऐसा ही हुआ, त्याग का अर्थ हम लोगों ने क्या अर्थ कर लिया, अकर्मण्यता, ऐसा यहां पर अर्थ नहीं है। आगे लिखा है न कर्मणा न प्रजा न धने न त्यागे न, तो त्याग का अर्थ जो है अकर्मण्यता नहीं है, जैसे मिट्टी का ढेला पड़ा है वैसे पड़े रहने में नहीं है। नीति शतक की कहावत है कि नहीं सुप्तस्य सिंहे मुखे मृगा प्रविशंति। इतना पराक्रमी सिंह है फिर भी आराम से सो जाए, सब छोड़ दे, सब त्याग कर दे, तो उसके मुख में मृग नहीं आते। उस पराक्रमी जंगल के राजा शेर को भी कुछ न कुछ करना पड़ता ना, तो ऐसे त्याग का मतलब अकर्मण्यता नहीं, कुछ करना नहीं, बल्कि त्याग का मतलब यह है कि आपका जो महत्वपूर्ण लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, उसके लिए श्रवण मन निध्यासन समाधि साधन चतुष्टय संपन्न होना, तब जाकर उसकी उपलब्धि होगी। तो न कर्मणा न प्रजया, हम लोग क्या करते हैं ना कि छोटे छोटे जो कृत्य हैं, मतलब कि जो अपने कर्तव्य हैं, कामना है, इच्छा है, पद प्रतिष्ठा है, उसके लिए जो कर्म करते हैं, या जो प्रजा मतलब संतति का सहयोग लेते हैं और धन का सहयोग, तीन ही है ना, पहले खुद करते हैं, खुद नहीं होता तो बंधु बांधव का साथ लेते हैं, उसको प्रजा बोलते हैं, और तीसरा भी धन लगाते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे 25 लाख फूक जाए पर पेट्रोल पंप खुलना चाहिए। तो छोटे छोटे कामना के लिए इसे हम कर्म करते हैं, धन लगाते, बंधु बांधव का नाता जोड़ते हैं। तो कह रहे कि जब छोटे छोटे इन कामनाओं की पूर्ति के लिए आप इतना कर्म कर रहे, इतना धन खर्च कर रहे, बंधु बांधव सबको इसमें लगा रहे, ऐसे ही जो सबसे महत्वपूर्ण परमात्मा है, ब्रह्म से बड़ा तो कोई चीज नहीं, बृहत्वात महत्वात ब्रह्म, त्रिहु ब्रीहु वृद्धो धातु से ब्रह्म बनता है। तो ब्रिंगु वृद्धो मतलब सबसे बड़ा, मतलब परम वृद्धि को प्राप्त है ब्रह्म, उस महत्वपूर्ण जो ब्रह्म है, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही अपने शारीरिक मतलब कि श्रवणेन्द्रिय मानसिक मतलब मन और बुद्धि के द्वारा हमें उसमें कर्म करना चाहिए, प्रजा को उधर लगाए, अपने धन को उधर लगाए, ये तात्पर्य है, न कि अकर्मण्यता में कुछ भी नहीं करने में तात्पर्य नहीं है। तो कहते कि न कर्मणा न प्रजया। अब दूसरा नंबर आया प्रजा का, प्रजा मतलब संतति। अब कोई सोचे कि चलो भाई अब मैं तो बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, अशक्त हो गया, परंतु हमारे पुत्र पौत्र बंधु बांधव बड़े बड़े हैं, बड़े होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, इनके द्वारा हम जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो कहते न प्रजया, प्रजा के द्वारा भी संभव नहीं। हाँ, प्रजा से संतति से आप लोक में यश पा सकते, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, मान बढ़ाई मिलेगी, कारोबार चलेंगे, परंतु इस परिवार से कुटुंब बंधु बांधव से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आदमी बुढ़ापे में अक्सर यही जो है ना बुद्धि लगाता, कई बार ऐसा हमारे सामने भी बातें आई, कोई बुजुर्ग होते है ना, तो खासकर हरियाणा के और जगह के नहीं, कई बार ऐसा हुआ, तो जब हरियाणा हम लोग बोलते तो बहुत सावधान रहते, जो बुजुर्ग होते ना वो फेता बांधने वाले, बोलते महाराज आपकी तरह तो हमारा पोता है पोता, मतलब कि आपके बात का कोई महत्व नहीं है, पोता है। इसीलिए जो है अपने को जरा संभल के हरियाणा में बोलना पड़ता है। तो अब उसको ईमान क्या कि हमारे बड़े बड़े बेटे हैं, बेटे के पोते हैं, ये बाबा जी क्या उपदेश करेंगे, ये तो अभी छोरे हैं। ये जो अभिमान है ना, इस अभिमान से उसको बड़ा सुख मिलता, इस सुख का नाम है अभिमानिक सुख, इसको कहते अहंकारिक सुख। तो कहते इस अभिमानिक सुख से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बड़ा अच्छा राजा था बुद्धिमान, उसने सोचा कि मंत्री लोग क्या पता 100 रुपये की चीज को 1 रुपया आके, 1 रुपया को 1 चवन्नी बताए, तो राजा स्वयं ही हीरा परखने की विद्या को सीखने लगा, सीखते सीखते पारंगत हो गया। अब राजा स्वयं ही अपने गुप्त खजाने के हीरों को परखने लगा, किसका कितना मूल्य होना चाहिए, किस कौन सा किस क्वालिटी का। एक दिन ऐसा गुप्त खजाने में हीरा मिला कि जिसका मूल्य राजा आंक नहीं पाया। उसने राज्य के सारे जौहरियों को बुलाया, कहा कि इस हीरे का मूल्य बताओ कितना होना चाहिए। सभी ने आका, किसी को पता ही नहीं चला। अंत में एक बूढ़ा 99 वर्ष का जौहरी आया, कहा राजन मैं इसके मूल्य को आंक सकता हूं, बता सकता हूं। राजा ने कहा अच्छी बात, पहले तो पूर्णिमा के चंद्रमा के चांदनी में हीरा को रखकर देखा, पता ही नहीं चला। फिर बहुत तरकीब अपनाया, उसको मालूम नहीं पड़ा कितना मूल्य होना चाहिए। अंत में पुराने जौहरी ने कहा कि ऐसा यार मुझे 100 सच्चे हीरो की व्यवस्था करो। राजा ने तत्काल 100 हीरा की व्यवस्था किया। वह एक एक हीरा रखता उसके पास, फिर देखता कि कितना इसकी रोशनी। जब 100 हीरा रख दिया एक तरफ, उसको एक तरफ, तो दोनों का प्रकाश बराबर, और एक हीरे का मूल्य था 1 करोड़, तो 100 हीरे का कितना हो गया 100 करोड़, 1 अरब। अब उसने राजा को कहा कि आपकी इस अमूल्य हीरे का मूल्य है 1 अरब। राजा ने कहा तुमने कैसे पता लगाया? तो पुराने जौहरी ने बताया कि बचपन से बुढ़ापे तक ये धंधा में करते रहा और तो कुछ में सीखा नहीं। राजा ने कहा फिर भी बताओ तो सही। जौहरी ने कहा राजन सबके सामने नहीं बताऊंगा, अकेले। राजा ने सही मंत्रियों कहा जाओ भाई। उस बूढ़े जौहरी ने कहा कि पहले तो मैं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के चांदनी में रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमने कहा कि चंद्रकांत मणि नहीं हो सकती। फिर मैं एक एक हीरा रखा, इस तरह से 100 हीरा रख दिया, तब देखा कि 100 हीरे के बराबर आप किस पुराने हीरे की रोशनी है प्रकाश। तो एक हीरे का मूल्य था 1 करोड़, तो 100 हीरे का हो गया 100 करोड़। उसके बराबर रोशनी है जिसका मूल्य हो गया 100 करोड़। राजा बड़ा खुश हुआ उसके तरकीब से, बिल्कुल ठीक तूने मूल्यांकन किया। अब सारे मंत्री आए, राजा ने कहा इसको मुंह मांगा इनाम दो। जो मंत्री था, मंत्री भी कम नहीं था, बड़ा होशियार था, मंत्री ने कहा कि इसको मुंह मांगा इनाम देने को बोल रहे हैं, पर विचार कर लीजिए क्या दिया जाए। राजा ने कहा जो तुम्हें पसंद, जो मांगे सो दे दो इसको। मंत्री ने कहा हुजूर विचार कर लीजिए, क्या पता मेरा इनाम आपको अच्छा न लगे। राजा ने कहा चाहे तुम कुछ भी दो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मंत्री ने कहा कि आप विचार कर लो महाराज, ये हमारे ऊपर नाराज हो जाओ ये दे दिया। राजा ने कहा मैं नाराज नहीं होऊंगा, चाहे तुम कुछ भी इनाम में दो। तो मंत्री ने कहा कि ऐसा है कि 100 वर्ष की इसकी आयु हो गई ना, तो एक एक वर्ष के बदले इसको 100 जूते लगाने चाहिए। अब तो राजा का ये 100 जूते, बोले ऐसा क्यों भाई? बोले कि इसको भगवान इतनी बढ़िया बुद्धि दी, विवेक दिया, शरीर दिया, इंद्रियां दिया, ये केवल हीरों को परखने में बर्बाद कर दिया। यही बुद्धि यदि सद असद के परखने में लगाता तो इसका जो है ना बेड़ा पार हो जाता। तब राजा ने कहा कि हाँ बात तो सही। अब राजा की बुद्धि भी खुल गई कि मैं भी इसी बुद्धि लगा रहा हूं। वही हालत हम लोगों की, हम लोग क्या करते ना, पहले तो कर्म से, फिर प्रजा संतति से, फिर धन से उस आत्मा को परखना चाहते हैं। परखना मतलब तौलना, किसका कितना मूल्य होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने सावधान कर दिया कि देखो जी, प्रजा से धन के द्वारा इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। त्यागेन एके अमृतत्वम आनसु, त्याग के द्वारा ही उस तत्व की उपलब्धि हो सकती है। त्याग का मतलब यह होता है कि जिस प्रकार से एक विद्यार्थी वैज्ञानिक बनने के लिए अपने देश को त्याग कर विदेश जाता है, माता पिता को छोड़ देता, बंधु बांधव का त्याग कर देता, सारी सुख सुविधा छोड़कर विद्यालय जाता है, 12-12 घंटे 16-16 घंटे लेबोरेटरी में रिसर्च करता है, वह भी तो त्याग है ना। जैसे एक छोटी सी विद्या के लिए, कला को सीखने के लिए एक विद्यार्थी अपने सम्माननीय माता पिता, भाई बंधु, परिवार, धन दौलत सबको छोड़कर विद्यालय में जाता है, तब जाकर उसमें वह दक्ष कुशल हो जाता है। ऐसे ही हमें परमात्मा को पाने के लिए इस संसार का, संसार मतलब कि जहां जहां हमारी ऐष्णा है, ऐष्णा मतलब चाह, जहां जहां हमारी चाह है पुत्र में, पौत्र में, बंधु बांधव, वहां से अपनी ममता को, ममता मतलब कि आसक्ति राग को हटा लेना। कई बार क्या होता है, भजन ध्यान बैठते हैं पर हमारी मनोवृत्ति बिना मतलब के पुत्र में, पौत्र में जाती है, फिर धन में जाता है, इसके बाद में फिर अपने क्रियाकलाप में हमने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, होता है ना। और समय नहीं होता है, जब आप शांति से बैठकर सत्कर्म करते हैं या देवार्चन ध्यान कर, तो उसमें जबरन मन जाता है, तो हमारा मनोवृत्ति उधर न जाए, तो उधर से हटाने के लिए कहा कि कर्म, प्रजा और धन, इनके द्वारा परमात्मा को उपलब्धि नहीं हो सकती। जब सामान्य विद्या सीखने के लिए हमें तीनों को छोड़ना पड़ता है, तो परमात्मा तो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको पाने के लिए त्याग बहुत जरूरी है। तो त्याग का मतलब अकर्मण्यता नहीं, सब कुछ छोड़ना छाड़ना नहीं, बल्कि अपने मनोवृत्ति को वहां से हटाना, यही त्याग है। परेण नाकम नीतम गुहायाम, नाकम, नाकम का अर्थ है कम, बोलते सुखम को, कम मतलब सुखम, नाकम अकम, अकम मतलब दुखम, अकम का दुखम है, न अकम विद्यते यत्र, बहुव्रीहि समास करना, न अकम विद्यते यत्र स नाकम, मतलब कि परमात्मा। देखो स्वर्ग को नाक कहते, स्वर्ग का अर्थ क्या नाक, तो स्वर्ग में जो सुख सुख है ना, वो सुख जो है ना क्षणिक, जब तक आपका पुण्य है तब तक वहां बने रहेंगे, छीने पुण्य पुनः मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। पर ये परमात्मा कैसा है, तो नाकम का परेण लगा दिया, सर्वोत्कृष्ट है, स्वर्ग से विलक्षण वह सुख है, जहां से फिर आना जाना नहीं होता। तो परेण नाकम मतलब जहां पर किसी प्रकार का दुख है ही नहीं, न अकम विद्यते यत्र, जहां पर दुख होता ही नहीं उसका नाम नाकम है। वो कहां पर है जी, तो निहितम गुहायाम। जब नाकम कहा ना, तो नाकम का स्वर्ग होता है, तो लोगों ने सोचा स्वर्ग लोग, तो कहा नहीं, निहितम गुहायाम, वो आपके हृदय रूपी गुफा में निहित है, छिपा हुआ है, हृदय रूपी गुहा जहां पर कि त्रिवेणी का संगम होता, गंगा जमुना का जहां संगम होता प्रयागराज, भौतिक जगत में जहां गंगा जमुना का संगम होता, वहां पर अपने आप त्रिवेणी का प्राकट्य, सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती है परंतु अंदर ही अंदर उसकी कल्पना करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में जब श्रवण और मनन का हृदय में जब संगम होगा, तो अपने आप सरस्वती का, सरस्वती मतलब ज्ञान, ज्ञान का उद्गम हो जाता है। जब आप श्रवणेन्द्रिय से सुनेंगे ये गंगा है, और जब मन के द्वारा मनन करेंगे, और दोनों का हृदय में, देखिए दोनों मंत्र क्या, ये मन तो मनन करता है और श्रवणेन्द्रिय से सुनते हैं, पर हृदय क्या है, भाव प्रधान, तो हृदय में जब दोनों का संगम होता है, श्रवण इंद्रिय का और मन का, उसी हृदय गुफा से अनिव्यक्त छिपी हुई सरस्वती का ज्ञान का उद्गम होता है। इसलिए कहा कि निहितम गुहायाम, इधर उधर नहीं है, आप हृदय रूपी गुहा में छिपा हुआ है। विभ्राजते यत यतियो विशन्ति, बड़े बड़े यति लोग, ज्ञानी लोग जिस आत्मा में प्रवेश करते, जिस प्रकार से हम लोग बहुत अच्छे बंगले में प्रवेश करते हैं तो कितना मजा आता है, एसी चल रही हो, रोशनी हो, अच्छा लगता है ना। ऐसे ही जब आप हृदय रूपी गुफा में श्रवण इंद्रिय और मन दोनों की सहायता से जब प्रवेश करते हैं तो विभ्राजति मतलब स्वयं प्रकाश आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। यतया कहा, यतया मतलब यत्नशील, यतया में यति प्रयत्नी धातु है। यतया कोई भी हो सकती है, जो भी प्रयास करता है, प्रयत्न करता है ना, चाहे नर हो, नारी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का हो, तत्काल जब वह वहां प्रवेश कर जाता हृदय गुफा में तो प्रवेश करते ही छिपे हुए रत्न जो चिंतामणि है, जो स्वयं प्रकाश आत्मा है, उसकी उपलब्धि हो जाती है। इसलिए अब विलंब नहीं करना। हम लोग विलंब इसलिए करते हैं ना कि संसार मूल्यहीन है, इस मूल्यहीन रसहीन आनंदहीन संसार में हम लोग क्या करते, रस को ढूंढते, सुख को ढूंढते हैं। उपनिषद में साफ साफ कहा, रसो हिवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, तैतरीय उपनिषद में है ना, रसो वैसा रसो हिवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। रस मतलब सार, महत्वपूर्ण एक परमात्मा ही है, जब उसको महत्वपूर्ण समझेंगे तो निश्चित ही उसको उपलब्ध करके परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव ओम शांति शांति।